हरे कृष्णा। आज भी वृंदावन जाएंगे सबसे पहले हम गुरु वंदना से और वैष्णव वंदना से शुरू करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर का बहुत सुंदर भजन है। वैष्णव गोसाई पतित पावन तुम बिना के हो दूरे जा मन दयाल प्रभु के बखोता गंगार पराशैले पश्चाते पाव दर्शने पवित्र करो तोमार गो स्थाने पर रे हरे हरि तुम स्थाने आप राधे नहीं परित्रा रोये सदा गोविंद विश्रा गोविंद गाए न मोरा वैष्णव परा चरणे रदुले चरणे रदुले नरोत्तमे गोरो दया अपनरवले वैष्णव गोसाई
Patita Pavana Toma Bina Kehona Vaishnava Jaya Vaishnava Thakur
Ananda Guri Vaishnavinda Ki. So Narottam Das Thakur Batate E Bara Karuna Koro Vaishnava Gosai. ओ वैष्णव गोस्वामी एक बार मेरे ऊपर कृपा करो. सो इस भजन में हम तो बहुत से वैष्णव अच्छा अच्छा गुण सुने हैं, लेकिन नारदम वो भी एक सावधानी बताते हैं. वैष्णव के बहुत से गुण है, अच्छा गुण है, लेकिन एक सावधानी भी है. क्या बताते हैं? Tomastani aparade thare no hari stani aparade thare hari nam hari stani ye kavi ki bhasha hai hari ke sthan pe, matlab agar hum hari ke prati aparad karte hain to thare hari nam hari stani sthan mani jagah. ऐसे पहले केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान थे, लेकिन ये सोवियत संघ टूट गए, फिर बहुत से स्थान निकल गए. एक उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बलूचिस्तान, बहुत से स्थान निकल गए. सो हर स्थान अपराध थारे हरि नाम. हम ठाकुर जी का अपराध करते तो नाम संकीर्तन के द्वारा ये सब अपराध खत्म हो जाते हैं. नेक्टर भक्ति रासमृत सिंधु भी बताते हैं कि जो डीडी वर्षिप ठाकुर जी का मूर्ति पूजा में सब जो जितने भी अपराध है हरि नाम संकीर्तन इसका नष्ट हो जाते हैं. लेकिन फिर बताते थोमस्ताने अपराधे नहीं परित्राण. ये परित्राण के शब्द कहाँ मिले भगवद गीता में? परित्राणाय साधु नाम. लेकिन थोमस्तानी वो वैष्णव के बारे में बात करते कि थोमस्तानी अपराधे नहीं परित्राणाय साधु नाम. और महाधुर्य कदम्बनी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके बारे में बताते हैं कि अगर हम वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो केवल एक ही उपाय है कि हम इस वैष्णव के पास जाकर उनसे माफी मांगा. किसी पर उनको सेवा करना और किसी प्रकार उनसे माफी मांगा. हम नहीं सोच सकते कि केवल हम इनके पास नहीं जाना पड़ेगा, हम केवल हरि नाम करेंगे और ये नष्ट हो जाएगा. फिर आपका वैष्णव अपराध वो भी नाम अपराध बन जाएगा, दुगना हो जाएगा. और हम नहीं सोच सकते वो तो छोटा वैष्णव है, किसी प्रकार उसके नाराज हो गए. किस प्रकार का वैष्णव है नाराज हो गया? वो छोटा वैष्णव है, इसका अपराध का कोई माफी मांगने का कोई आवश्यकता नहीं. लेकिन ठाकुर जी भागवत गीता में क्या बताया? आप पीछे सुदराचरो बजते बाम अनन्य भक् साधु एव समन्तव्य. साधु एव समन्तव्य के मन पड़ेगा, ये तो इम्पेरेटिव टेंस में है. देखिए जब वो अच्छा व्यवहार करते तो ठीक है, हम उसको सम्मान देंगे, और जब वो दूराचार है तो फिर उसका समान नहीं 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 आप ही चाहिए सु ना केवल दूराचार सु दूराचार भजन थे महाम अनन्य भक्त वो मेरा अनन्य भक्त है कोई देवी देवता का पूजा नहीं करते ठाकुर जी के अनन्य भक्त है तो साधु एव वो साधु है मानना पड़ेगा मंतव्य मतलब मानना पड़ेगा साधु एव समंतव्य जैसा दो आदमी नदी के तट पर चल रहा था ये दोनों ने देखा कि एक बहुत गंदा आदमी नदी के तट पर स्नान कर रहा था सो एक मित्र ने कहा कि देखो कितना गंदा आदमी है तो वो अभी स्नान कर रहे क्या वो क्यों उसका निंदा कर रहे अभी स्नान कर रहे तो थोड़ी देर में वो साफ हो जाएगा हाँ सो जो ठाकुर जी के नंदे बाग बहुत जल्दी अगली वाली श्लोक है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा बहुत जल्दी ही वो धर्मात्मा बन जाएंगे सो हम ये हम नहीं सोच सकते कि वो छोटा वैष्णव इसका अपराध करने का कोई आवश्यक माफी मांगने कोई आवश्यकता नहीं है नो सब वैष्णवों के प्रति जो अपराध होते हैं हम इससे माफी मांगना पड़ेगा इसलिए रोज हम बताते पंचकल्प त्रिभ्यश्चा कृपसिन्धुभ्यश्चा तितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तो बहुत से अच्छे गुण है वैष्णव का लेकिन एक सावधानी है और वास्तव में जीव गोस्वामी बताते हैं अपने भक्ति संदर्भ में कि भक्ति बिल्कुल सरल है बिल्कुल सरल इजी और वो उदाहरण देते हैं कि जैसा एक बार एक छोटा सा चिड़िया के पास पड़ी थी और फिर एक हॉक व्हाट यू से हॉक जो बड़ी पक्षी है चील आया तो ये चील क्या कहते छोटी पक्षी को तो छोटी पक्षी का पीछे आ रहा था और छोटी पक्षी विष्णु मंदिर के प्रदक्षिण कर रहा था ये चील उसको पकड़ लिया मार दिया और वो इसका आत्मा बैकुंठ चल गया क्योंकि मारने के समय वो विष्णु मंदिर का प्रदक्षिण कर रहा था बिना ज्ञान ज्ञान करके उनके पास कोई ज्ञान है कि ये विष्णु मंदिर है लेकिन इतना सरल है तो फिर देव गोस्वामी ये प्रश्न रखते हैं तो फिर हमारे भक्ति जीवन में क्यों कितना तकलीफ हो रहा है अगर भक्ति इतना सरल है और जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो मुश्किल है भक्ति राष्ट्र में इस वैष्णव अपराध से बचना भक्ति तो सरल है लेकिन वैष्णव अपराध से बचना मुश्किल है इसमें बहुत अभ्यास करना पड़ेगा और वो स्कंद पुराण के एक श्लोक बताते हैं जिसमें हम तो रोज सुनते हैं ये दस नाम अपराध लेकिन इस श्लोक में ये छह वैष्णव अपराध है जैसे भागवत गीता हन्य थे हन्य माने से हंती मतलब वैष्णव के प्रति नुकसान पहुंचाना टू हर्ट अ वैष्णव हंती निंदन थी ओ ये हमारा सबसे प्रिय है हम बहुत अच्छा लगते हैं वैष्णव निंदा इसलिए ये पूरा इंटरनेट बहुत बारे है वैष्णव निंदा से हंती निंदन थी भाई द्वेष थी वैष्णव का ईर्ष्या करना अंति निंदी भाई द्वेष थी वैष्णव आना अभिनंद थी और कोई वैष्णव आते हैं तो फिर उसका अभिनंदन होना चाहिए किसी प्रकार कम से कम हरे कृष्ण प्रभु किसी अगर हम और कुछ नहीं कर सकते कम से कम उसको एक आसन देंगे थोड़ा सा पानी देंगे महाप्रसाद देंगे किसी प्रकार उसका अभिनंदन होना चाहिए और कम से कम हरे कृष्ण प्रभु और वैष्णव आन अभिनंदन जी अभिनंदन के नहीं करना वो भी अपराध है। अंति निंदी वैदि वैष्णव आन अभिनंदी क्रूद्यंते संधि के अनुसार जब क्रोध एक खड़क बन जाते हैं तो उस वो बदल हो जाते क्रूध क्रूद्यंते वैष्णव के ऊपर क्रोध करना अंति निंदी वैदि वैष्णव आन अभिनंदी क्रूद्यंती यदि नो हर्षम दर्शनम अगर हम वैष्णव का दर्शन करते हैं और हमारे हृदय में हर्ष नहीं होते हैं वो भी अपराध है। हम सोचते ओ फुलाना दास आ रहे हैं ओ फुलानी दासी आ रहे हैं सभी हमें पता है कि क्यों हमारे भक्ति जीवन में कितना तकलीफ है कि वहां तक अपराध है। तो जीव गोस्वामी से भक्ति बहुत सर्व सर्व स्वतंत्र सर्व सरल है लेकिन जो मुश्किल है वो वैष्णव का अपराध से बचना। सो हम वैष्णव के संग में सावधानी रहना चाहिए ये सावधानी भी है नारचंद बताते हैं। तो जब हम वैष्णव की कृपा मिलते हैं तो फिर हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए तो फिर हम महाप्रभु का वंदन बहुत सुंदर भजन से करेंगे। सुंदर लाल सचिव लाल नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाल सचिव लाल नाचत श्री हरि कीर्तन में बाल जन्नन तिलक मनोहर अलक शोभे कपोल नमे बाल जन्नन तिलक मनोहर अलक शोभे कपोल नमे बोलो सुंदर लाला सजीव लाला नाचत श्री हरि कीर्तन में बोलो सुंदर लाला सजीव लाला नाचत श्री हरि कीर्तन में राधा कृष्ण एकत्रे निधुबन मे बंसी बजावे विश्वरूप की प्रभु जी साहे आवत प्रकट नरिया में बोलो सुंदर लाला सजीव लाला नाचत श्री हरि कीर्तन में बोलो
Radha Krishna, koi gavat hai Hari Gunagan, Mridanga Chala, Madhura Rasala, Bajata hai koi Gangan mein.
Sundara Lala Sachi Dulala Nachata Sri Hari Kirtan Me. Jo Sundar Sundar Lala Hai Sachi Mata Ka Hamesha Naam Sankirtan Me Nach Karte Hai. Kyunki Is Kali Kal Me Keval Ek Hi Matra Sadhan Hai Ye Naam Sankirtan Kara Badi Jor Se Badi Prem Se Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Lord Chaitanya Mahaprabhu, antame sannyas grahan kiya, aur sannyas lene ke paschal, वो विचार किया कि मैं वृंदावन जाऊंगा लेकिन सच्ची माता आए और आपके चरणों में गिर पड़े और बोले कि प्रभु आप वृंदावन जाएंगी तो आपका खबर कभी नहीं मिलेंगी आप जगन्नाथ फिर आप पुरी में जाओ क्योंकि ये बंगाली भक्त आते रहते पुरी से सो थोड़े से खबर मिलेंगे सो महाप्रभु मान लिए तो मेरे माता जी है सो आपकी बात तो मानना पड़ेगा तो चैतन्य महाप्रभु आए पुरी में लेकिन थोड़ी देर पश्चात चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत का यात्रा किया था और वो यात्रा नहीं किए जैसे हम लोग एसी गाड़ी में एसी बस में वो अपने भाव से पैदल रास्ता पैदल से जा रहा था रास्ते में और दोनों बूझ उठा के वो हरे कृष्ण मंत्र गाते थे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे और बिल्कुल प्रेम वश में था कोई बाहरी चेतना नहीं था और जो लोग चैतन्य महाप्रभु इस अवस्था में देखा प्रेम अवस्था में कीर्तन करते हुए वो भी कीर्तन करने लगे केवल देखने से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे और ये आदमी अपना अपना गांव जाकर जो लोग उनको देखे कीर्तन करते हुए वो भी गाने लगे हरे कृष्णा कृष्णा ठीक इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन के प्रचार और विस्तार किए थे. सो पुरी से थोड़ा सा आगे जाके आंध्र प्रदेश में एक स्थान है कूर्म क्षेत्र. पिछले साल हम कूर्म भगवान का दर्शन भी किया था कूर्म क्षेत्र. सो चैतन्य महाप्रभु वहाँ भी गए कूर्म भगवान के दर्शन करके वो बहुत सुंदर कीर्तन करने लगे और सब लोगों को बहुत आश्चर्य लगा. ये चैतन्य महाप्रभु का प्रेम वश कीर्तन वो सब लोगों को बहुत आश्चर्य लगा. तो फिर स्थान के एक आदमी था ब्राह्मण था इसका नाम था कूर्म ब्राह्मण. चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्रेम वश कीर्तन में उनको थोड़ा सा आइडिया आया. कीर्तन करने के पश्चात वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले कि प्रभु मैं बहुत पति गृहस्थ हूँ, कृपा करके मेरे घर पर आइए और वहाँ कुछ देर ठहरिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए. सो महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण के घर पर गए थे और रोज रात को हरि कथा जैसे हम लोग कर रहे हरि कथा और कीर्तन होते रहा 3 दिन तक. सब लोग बहुत आनंद आया, सब लोगों को बहुत आनंद आ रहा था. सो तीसरे दिन चैतन्य महाप्रभु जाने के लिए तैयार कर रहा था. हम के जैसे ने दो सैमसनाइट सूटकेस नहीं लोटर कंबल साधु का संभव लोटर कंबल बस. और कूर्म ब्राह्मण आए और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले प्रभु आपके संग में इतना नंद आ रहा है कि कृपा करके एक और रात ठहरिए. और महाप्रभु बोले नहीं, मेरा नियम है हम किसी गृहस्थ के साथ केवल 3 दिन से अधिक नहीं रहते. मैं संन्यास ग्रहण नहीं किया कि हम किसी गृहस्थ के घर पर हम आनंद लेंगे. नहीं, मेरा उद्देश्य है नाम संकीर्तन प्रचार प्रसार करना. लेकिन प्रभु आपके संग में इतना नंदा रहे कृपा करके एक और रात ठहरे. और कूर्म ब्राह्मण का भाव देखकर चैतन्य महाप्रभु उसका नियम का उल्लंघन किया. एक और रात ठहरे कूर्म ब्राह्मण के घर पर, रात पे हरि कथा और हरि कीर्तन. सो अगले दिन चैतन्य महाप्रभु जाने के लिए तैयार कर रहा था तो कूर्म ब्राह्मण इनके पास आए और महाप्रभु नहीं मैं आज जाऊंगा. नहीं नहीं प्रभु आप जाइए, मैं आपको रोकने के लिए नहीं आया. लेकिन प्रभु इस गृहस्थ जीवन में इतना तकलीफ इतना परेशानी सो मच ट्रबल एंड ट्रबल. प्रभु मैं सब कुछ छोड़कर आपके साथ चले जाऊंगा. अभी सर माता जी चिंतित हो गए, दीन बंधु सब लेके जाएंगे वृंदावन के साथ. लेकिन महाप्रभु क्या बोला, नहीं यह मेरे उद्देश्य नहीं है कि आप घर छोड़ करके मेरे साथ जाना. आप घर पर ठहरिए और हरि नाम कीर्तन कीजिए. वास्तव में महाप्रभु अमर शब्द कहा यारी देखो ताई को कृष्ण उपदेश हमारा ज्ञाय गुरु है थारे देश. घर छोड़ने के कोई वश घर पर रो लेकिन हमेशा सबको हरे कृष्ण बोलो और कृष्ण के ऊपर देश दीजिए. नो नीड टू गिव अप योर फैमिली लाइफ, अब घर पर रो. लेकिन थोड़ा समय कीर्तन कीजिए और भगवद गीता यथारूप का पढ़ लीजिए. बहुत ही सरल रास्ता है। जारी देखो थाई को कृष्ण उपदेश, हमारा ज्ञाय गुरु है, तू गुरु बनाओ। अरे मैं गुरु बनने के क्या गुण है, मैं कैसे गुरु बन सकते हैं? नहीं, बहुत सरल उपाय है। जैसे ये डाकिया, ये डाकिया ये पत्र आपसे लेते और ये थार रूप इसके ग्राहक को पहुंचवा देते हैं, न कि ये डाकिया ये लेटर ये पत्र कॉल करके वो ये लिखा है लेकिन वो सही नहीं है, ये लिखना चाहिए था और ये लाइन तो खत लेंगे। ऐसे करेंगे डाकिया तो उसका अरेस्ट हो जाएंगे, घर घर में पड़ जाएंगे। ये था रूप ग्राहक के पास पहुंचवा देते हैं। सूती के इसी प्रकार जो कुछ प्रभुपाद बताया भागवत गीता में, इसका हम बताएंगे किसी को तो मैं गुरु हो गया। बहुत सरल है, तक महाप्रभु से हमारा गाय मेरा आगे से गुरु बना। आपके गुरु बनने का कोई गुण नहीं है, लेकिन मेरा आगे से हमारा गाय गुरु है और थारे देश आपके सब देश वाले को बचाओ। तो ये चैतन्य महाप्रभु का बहुत सरल उपाय है। संन्यास लेने का और सब घर छोड़ने का, परिवार को टूटना कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर पर रहो लेकिन थोड़ी देर में नाम संकीर्तन कीजिए सबके साथ। और सब लोग बोलते कि बाबा मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हम कितना समय नष्ट कर देते हैं ये एक आंख वाली असुर के सामने। रोज हम योगी से दृढ़ ध्यान से देखते रहते एक आंक वाले असुर के सामने, कितना समय नष्ट हो जाता है। थोड़ी देर आपका एक आंक वाले असुर के ऊपर थोड़ा सा कपड़ा डाल दीजिए, लगा दीजिए उसको, ठाकुर जी के सुंदर सुंदर चित्र लगाओ, थोड़ा सा अगरबत्ती जलाओ, इसमें कोई खर्च नहीं है, बहुत सरल उपाय है। और सब परिवार सब मित्रों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए और थोड़ा सा भागवत गीता के थारू एक दो श्लोक पढ़ लीजिए, सरल है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक उद्देश्य है। और इस प्रसंग में एक और प्रसंग आते हैं, कोई चैतन्य महाप्रभु क्रम ब्राह्मण के घर से यात्रा में चले गए। पास के गांव में एक आदमी था, उसका नाम था वासुदेव। और वासुदेव को ये कौन सा कुष्ठ रोग था, इसका सारी अंगुली खराब हो रहा था, नाक खराब हो रहा था, सब पूरे शरीर में उससे घाव था। और इतना नम्र वैष्णव था, गाँव में कभी कभी कोई खीर घूम रहा था और कभी कभी जमीन पर गिरते थे। और वासुदेव ने सोचा वो बहुत चिंतित है, तो उसको वापस गाँव में लगाया। वैष्णव का जो नम्रता है वो आकार है। तो वासुदेव ने सुना कि पास के गांव में कि कुमार ब्राह्मण के घर पर एक महान पुरुष आए थे, तो उसका भाव बहुत खराब था, बहुत इन्फेक्शन था, लेकिन किसी प्रकार लाठी लेके कुमार ब्राह्मण के घर पर पहुंच गए थे। बहुत दर्द हो रहा था, बहुत मुश्किल के साथ पहुंचे। और कुमार ब्राह्मण ने कहा कि वो चले गए आज, और वासुदेव जमीन पर गिर पड़े और रोने लगे, अरे मैं बहुत भाग्य हूँ, ये महापुरुष के दर्शन नहीं हो पाए, मैं बहुत भाग्य हूँ, मैं क्या करूँ। अचानक महाप्रभु इस स्थान पे प्रकट हो गया, वो चले जा चुके थे लेकिन प्रकट हो गया। और वासुदेव को उठा के उसका लिंगन किया। जब महाप्रभु का लिंगन हो गया, वासुदेव का पूरा शरीर बहुत सुंदर हो गया। आप ऐसे कर रहे वासुदेव रोने दोबारा रोने लगे,
अरे प्रभु मेरे शरीर ठंडर हो गया, मैं माया में फंस जाएंगे, अभी मैं ठीक था जैसे था।
और महापुरुष को पीठ पर ऐसे किया कि चिंता मत करो माँ, मैं आपके हृदय में हमेशा रहेंगे। और महाप्रभु अप्रकट हो गया। सो ये चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक उद्देश्य न कि आप सब कुछ छोड़ करके चले जाना, नो घर पर रहो लेकिन हरि कृष्ण मंत्र गाओ और ठाकुर जी का जो वाणी है श्रीमद् भागवत इसको पढ़ो, और जो ठाकुर जी के बारे में श्रीमद् भागवत इसको पढ़ो। ये चैतन्य महाप्रभु का बहुत सरल उपाय है। सो जब हम वैष्णव के कृपा मिलते हैं, चैतन्य महाप्रभु के कृपा मिलते हैं, और हम नाम संकीर्तन करते हैं, तो फिर हम ब्रज में जा सकते हैं। सो एक बहुत सुंदर भजन है, छोटा सा ब्रज गीत है लेकिन बहुत ही सुंदर है।
श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम, श्री राधे ब्रज जन मन सुख, मुकुट मकराकृत कुंडल गले वैजयंती माला, मोर मुकुट मकराकृत चरण नूपुर रस साल, राधे श्याम श्याम श्याम, चरण Radhe 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 Sundara badana kamala dala lojana bangi jitavalari, Sundara badana mohana bansi dihari, Radhe chama chama mohana, Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam, Oh Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam, Radhe 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 Shyam Shyam Shyam, वृंदावन में रेणु चलावे गोपी जन मन हारे, श्री गोवर्धन धारि राधे श्याम श्याम श्याम, श्री गोवर्धन धारि Oh Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam, Oh Radhe Shyam
Radha Krishna Miliya Bado Gaura Rupa Avatari Bado Avatari Kirtana Dharma Prachari Radhe Jama Jama Radhe Shyam, 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 Radhe Tum bina mere aur na koi naam rupa avatari. Tum bina mere aur na koi naam rupa avatari. Charna me balihari radhe jama jama jam. Charna me balihari. Narayana Balihari Radhe Jama 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 O Radhe Jama Radhe Jama Radhe Jama Radhe Jama O Radhe Jama Radhe Jama Radhe Jama Radhe Jama Radhe Shyam, Radhe Shyam, Oh Radhe Shyam, Radhe Shyam, Oh Radhe Shyam, Radhe Bodhi Sundu. You get it closer, then it goes woo woo. Bodhi Sundu Brajki Gite. Or hum Bodhi Sundar Stan Pe Jayenge Aaj Sabse Pahle Mansarovar. Mansarovar Radharani ka. Ek sarovar hai jo Radharani ka ansu se bana hai. Iske chota sa lambi itihas hai. Ek bar ek yogi the, iska naam tha Asurari. Aur Asurari ek dusre dweep mein rehte the, abhi iska yaad nahi, jaise hum log Jambu dweep mein hai. वो दूसरे द्वीप में थे जहां ये दही वाली सागर है. वो योगी थे लेकिन वैष्णव योगी थे, तो आपके हृदय के भीतर ठाकुर जी का ध्यान करते थे. और ध्यान करते 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 एक दिन ठाकुर जी आपके हृदय से अप्रकट हो गया. फिर बहुत प्रयास किए उनको देखने के लिए.
और ठाकुर जी नहीं आया, उसको बहुत आश्चर्य लगे कि क्या बात है। तो फिर दही सागर से वो दूध सागर के पास गए जहां श्वेत द्वीप है, और श्वेत द्वीप में देखा कि वहां ठाकुर जी का जहां वो शेषनाग के ऊपर विराजमान हो जाते वो ठाकुर जी वहां नहीं था। और सब श्वेत द्वीप वाले से पूछे कि ठाकुर जी कहाँ गए, किधर चले गए भगवान, मालूम नहीं, यहां था दो मिनट पहले यहां था थे, किधर चले गए मालूम नहीं। सो फिर असुरारी कहाँ गए, बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में वो भी देखे कि सब पुजारी लोग बहुत सुंदर इधर उधर चल रहा था अपना अपना सेवा में, लेकिन भगवान बद्री विशाल वहां नहीं थे। और सब पुजारियों से पूछा कि भगवान कहाँ है, मालूम नहीं, इधर था कुछ क्षण पहले, किधर चले गए मालूम नहीं, यहां था पहले। सो बहुत निराश हो गया कि वो श्वेत द्वीप में, उसके हृदय से चले गए, श्वेत द्वीप से चले गए, बद्रीनाथ से चले गए, तो पूरे बैकुंठ तक चले गए। और बैकुंठ में बहुत से लोग देखे जो चार भुज था, बहुत सुंदर श्याम वर्ण रंग था, और बहुत सुंदर पीली वाली वस्त्र में पहने थे, बहुत से लोग देखे जैसे इनका भगवान, लेकिन किसी के पास ये सुनहरे वाले श्रीवत्स नहीं था, न कस्तूबा मणि। और सब बैकुंठ वाले से पूछे कि भगवान कहाँ है, तू नहीं जानते, नहीं हम नहीं जानते, तू नहीं जानते, नहीं हम नहीं जानते, तू नहीं जानते, नहीं हम नहीं जानते। अभी अपना ग्वाल रूप का अवतार लिया वृंदावन में। एनीवे ये बैकुंठ वाले लोग ऐसे सोचते हैं, तो उनको जाने दो शांति से। तो फिर असुरारी वो वृंदावन में आया, और जब वृंदावन में आया पूर्णिमा था, और ये सब गोपीगण इधर जा रहा था कि श्याम सुंदर खाएं, श्याम सुंदर खाएं, सब लोग श्याम सुंदर को ढूंढ रहा था और वो नहीं थे, सब रोने लगे, सब कोई फूटने का बाग लिए, कोई छोटी छोटी ठाकुर जी का बाग लिए, ये फूटने का लीला किया, गोवर्धन पार्वती का लीला किए, सब इतना बिरहा में कि ये सब लीला करती थी, और सब लोग ढूंढ रहा था कि श्याम सुंदर कहाँ है, अभी प्रकट हो गया। जय श्री श्री गौरनिता, श्री श्री राधा गिरिधारी जी, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र। फिर इनके हृदय में नहीं है, श्वेत द्वीप में नहीं है, बद्रीनाथ में नहीं है, बैकुंठ में नहीं है, और सब लोग बताए कि वृंदावन में है, और सब वृंदावन वालियों को ढूंढ रहे हैं, वहां भी नहीं है, तो रोने लगे। तो फिर वो कैलाश के पास गए, भगवान शिव के पास रोते हुए, और शिव जी के पास आया, और शिव जी क्या बात है लाला, वो सब कुछ बताए, और शंकर जी हंसने लगे, ये मजे की बात नहीं है, नहीं नहीं नहीं, तू सही स्थान पे गए, ठाकुर जी अभी वृंदावन में हैं, लेकिन इस समय गोपी से अप्रकट हो गया, क्योंकि वो थोड़े का मंदी हो गया कि हम इतना भाग्यशाली है, ठाकुर जी हमारे पास है, तो ठाकुर जी गमन नहीं चाहते बाक्ष के हृदय में, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि अभी महारास होने वाला है, चलो दर्शन करेंगे। तो फिर असुरारी और शिव जी बोध दोनों आए ब्रज में, और रासस्थल के पास आए, और मृण ने उनको रोक लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई मेल बड़ी से मेल पुरुष, कोई पुरुष नहीं आ सकते, केवल स्त्री आ सकते, कोई पुरुष नहीं आ सकते रास लीला में। बोला कि क्या करूं,
और ब्रिंदादेवी ने कहा कि एक उपाय है, क्योंकि पिछली महीने के पूर्णिमा पर क्या हुआ कि ठाकुर जी जमुना के तट पर थे और ये सब गोपीगण वहां थी, लेकिन राधा रानी नहीं थी, क्योंकि सब लोग बताते रहते कि ये स्त्री हमेशा देर आती है, सो राधा रानी देर आए, अपना मेकअप कर रहे थे। सब लोग प्रतीक्षा कर रहा था, तो अंत में ठाकुर जी सब गोपियों के साथ नाचने लगे। फिर थोड़ी देर में राधा रानी आए, दूर से देखे कि ठाकुर जी बहुत से गोपियों के साथ नाच कर रहा था और आनंद ले रहा था, और राधा रानी के हृदय में शोक आया। राधा रानी रोने लगी कि मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ दिया, मेरा समाज का स्थान छोड़ दिया, मेरा ज्येष्ठों का सम्मान भी छोड़ दिया, मेरे सब मित्रों के सब कुछ छोड़ दिए इनके लिए, और मेरा सब कुछ लेके वो कुचल कर रहे। सो राधा रानी नाराज होके जमुना पार किया और एक वन में चले गए, बहुत सुंदर कुंज में बैठे थी और रोने लगे, और इनका आंख से बहुत से आंसू बहने लगे। और धीरे 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 ये सब एक छोटे से सरीत में आया, और फिर अंत में एक पूरा सरोवर बनाया, और ये मान का आंसू थे, सो इसके नाम हो गया मान सरोवर। तो फिर चैतन्य चरित में लिखा है कि ठाकुर जी करोड़ों गोपिया होते हुए भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक राधा रानी नहीं है। तो ठाकुर जी ने देखा थोड़ी देर बाद कि राधा रानी तो नहीं आया, तो फिर ललिता और विशाखा बुलाए कि राधा रानी कहाँ है, हमें मालूम नहीं, लेकिन उनके पास जाना है और ले आना, क्योंकि मैं खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, पी नहीं सकते, जी नहीं सकते बिना राधा रानी, उनको यहाँ जल्दी बुलाओ। सो ललिता विशाखा सब जगह में ढूंढने के लिए गए, और फिर एक चटक पक्षी ने इशारा किया कि जमुना पार करके इस कुंज में चले गए। सो ललिता विशाखा वहां चल करके बहुत विशाल सरोवर देखा, जहां कोई सरोवर पहले नहीं था। इसके सरोवर का दर्शन करके इसके रोमांच हो गए, उसके आंख से आंसू बहने लगे, वो पता है कि ये कोई साधारण सरोवर नहीं है। फिर देखे एक छोटा ये पानी आ रहा था सरोवर में, इसके पीछे 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 वो आए बहुत सुंदर कुंज में, राधा रानी वहां बैठी थी और रो रही थी, और ललिता विशाखा बोले जल्दी जल्दी आना श्याम सुंदर, आपके बिना वो नहीं रह सकते, न जी सकते, न पी सकते, न सो सकते, न खा सकते, वो जी नहीं सकते। और राधा रानी ने कहा ये व्यक्ति न कि वो बाहर से काला है, वो अंदर ही काला है, वो काला ही काला है, इस काला व्यक्ति मुझसे बहुत से बार धोखा दिया, मैं इस काला व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखूंगी, I don't have, want to have anything to do with this black fellow. So Lalita Visaka वापस ठाकुर जी के पास गए, बोले ऐसा ऐसे है, उसका मान का भंग हमने कर सकती थी। सो ठाकुर जी वहां गए मान सरोवर के पास इस कुंज में, तो फिर जो स्वयं परम भगवान है, जिनके चरणों के ऊपर ये सब ऋषि मुनि व्यास आसित देवला नारद ये सब ऋषि मुनि इनके चरणों का पूजा करते हैं, और जो सब देवी देवता इंद्र चंद्र शिवा ब्रह्मा इनके चरणों के सेवा करते हैं, वो राधा रानी का चरणों को दबाने लगे और वहां मानसरोवर में एक मंदिर है जिसमें बहुत सुंदर चित्र है। राधा रानी बैठे है मान में और उसका आंख ऐसा दका दिया, लेकिन आंख के कोने के कोने के कोने के कोने के कोने के कोने से ठाकुर जी को देख रहे। वो आंख बंद कर दका दिया लेकिन वो थोड़ा सा कोने के कोने के फिर ठाकुर जी का अंक से एक आंसू आया और जो हर्ष का आंसू वो तो ठंडा है और शोक का आंसू वो भी वो गर्म है। सो ये आंसू टी 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 आया फिर पिंग राधा रानी के चरण के ऊपर आया। फिर राधा रानी जब ये गर्म आंसू आपका भाव पे फील जिसे महसूस हुआ तो फिर देखा कि ठाकुर जी वहां उसके चरण स्पर्श कर रहे तो फिर इनके हृदय में दया आ गए और फिर ठाकुर जी को माफी दिया। तो ये स्थान है मानसरोवर, पहले बहुत सुंदर स्थान, वहां कोई केवल खच्चर रास्ता सा, लेकिन वो अब मथुरा होके पुल के ऊपर जाके फिर राय होके फिर बहुत लंबे लंबे रास्ता था और अंत में कोई खच्चर रास्ता था। अभी वृंदावन में एक जमुना पार करने के लिए एक पुल बनाया, ये जो रास्ता है वो बिल्कुल मानसरोवर के पास आया। अभी तो पिकनिक स्थान होने लगे, लेकिन पिछली जहाँ हम सबसे पहले गए वहाँ बिल्कुल सुंदर प्राकृतिक स्थान था, बहुत शांति का स्थान, बहुत सुंदर था। अभी भी सुंदर है लेकिन उसका सुंदरता धीरे धीरे, अभी तो प्लास्टिक वैक्सटिक सब जगह में सब लोग तो पिकनिक करते कोई ध्यान नहीं देते कि ये बहुत सुंदर पवित्र स्थान है, सब फेंकते प्लास्टिक एवरीथिंग। और पहले किसी को पता नहीं था मानसरोवर, दूसरा रास्ता था कि अब नौका लेके और जब ये पीपल पुल था, पीपल पुल क्रॉस करके ये खेत के द्वारा एक रास्ता था, लेकिन अगर आप किसी गांव वाले से पूछते कि मानसरोवर कहाँ है, वो ऐसा आपको देखते थे। किसी को पता नहीं था मानसरोवर के। अगर कोई चतुर गांव वाले के पास आया, ओ राधा रानी, तू राधा रानी जाना चाहते हैं, इधर से जाओ, क्योंकि ये गांव वाले के ज्ञान में इस स्थान का नाम है राधा रानी, तो वहाँ राधा रानी का मंदिर है। कोई नहीं जानते थे पहले, अभी तो ये पुल बन गया इसलिए लोग पता लगा कि मानसरोवर है कोई स्थान, लेकिन पहले किसी केवल राधा रानी कहते थे। ओ तू राधा रानी जाना चाहते, इधर से जाओ और वहां से जाओ। और वहां बहुत भी चित्र मंदिर, बहुत पहले केवल टूटी फूटी में, अभी बहुत लंबे लंबे शिखर है, श्वेत संगमर पत्र के शिखर है, पहले वो बहुत छोटा मंदिर था। और बहुत भी चित्र मंदिर है, वहां केवल शील के रूप में राधा रानी विराजमान है। और बगल में ये मंदिर के बगल एक बहुत सुंदर पीलू वृक्ष का कुंज है, कोई ब्रज में ये पीलू वृक्ष बहुत प्रसिद्ध है। इसके छोटी छोटी इस समय अभी इस समय ये फल आ रहे, छोटी छोटी बहुत गहरे रंग का लाल फल आते हैं, बहुत स्वादिष्ट, ये ठाकुर जी और सब ग्वाल बाल का बहुत फेवरेट है। ये कुंज भी है राधा रानी के, वहाँ श्वेत संगमर पत्र का चारण चिन्ह है। और दूसरा इसके पास दूसरा मंदिर है जहाँ ये बहुत सुंदर चित्र है राधा रानी का ऐसे। ये मानसरोवर, फिर मानसरोवर से एक रास्ता जाते बंदीरवन, एक और वन है पास बंदीरवन, वंडरबन में बहुत भी चित्र लीला हुआ।
और शिवराम स्वामी अपना कृष्ण वृंदावन सीरीज में इसमें वेणु गीत का एक भाग है वॉल्यूम वन और बहुत सुंदर प्रकार इस लीला का प्रस्तुत करते हैं। शिवराम स्वामी बताते हैं कि एक दिन जो बादलों का राजा था उसने देखा कि अभी बादल चारों ओर फैले हैं, अभी सूर्यास्त होने वाला है और वो विचार करने लगे अगर सूर्यास्त होगा और सूर्य ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते तो फिर शायद बहुत दुखी हो जाएंगे तो कल उसको उदय नहीं होगा। हम बहुत दुखी हो जाते जैसा जब हम ये खबर मिले कि आइंद्र प्रभु इस दुनिया से चले गए, हम तो दोबारा बिस्तर से नहीं उठाना पड़ता था। अगर स्वप्न में हम सोच सके कि आइंद्र फिर भी है लेकिन जगह में तो फिर वो शायद दर्शन न होके वो इतने दुखी हो जाएंगे वो सूर्योदय नहीं होगा। तो एक कहानी सब बादलों को बताने लगी जिससे सूर्य भी सुन रहा था। पहली इसने नंद बाबा का जो बादशाली इसने इसके बारे में बात करने लगी। नंद बाबा के नंदलाल के प्रति बहुत घन स्नेह है। He loves Nandalala so much. वो नहीं देख सकते कि नंदलाल इसके दृष्टिकोण के बाहर जाए। वो चले जाते गाय चराने के लिए लेकिन दो कदम लेके फिर वापस आते और नंदलाल अपना कंधे पर बिठा देते। वो जा नहीं सकते भी नंदलाल। और ये सब बदल नंद बाबा का अपार वात्सल्य प्रेम के बारे में सुनकर सब बदल बॉस से बिजली और गराज कराने लगे। पाम, पाम, पाम। फिर थोड़ा सा ये बादल अलग हो गया और एक सूर्य के किरण आया ठाकुर जी के ऊपर, सूर्यास्त हो गया, सूर्य के दर्शन हुआ। फिर ये बादल बताया कि एक बार नंद बाबा लाला पर खंडी पर बिता दिया और गौ चराने में गए और नंदलाल को जितनी भी वंडरफुल व्हाट वी से वंडरफुल जो सुंदर सुंदर चिस्ता बन में वो नंदलाल को दिखा रहा था। जो बन के सुंदरता था वो नंदलाल को दिखा रहा था। किसको दिखा रहा था? जिन्होंने सब वन के सुंदरता बनाए थे। He was showing the wonders of the forest to that person who created all the wonders of the forest. देखो लाला वहां एक बेर वृक्ष है जिसके पीली 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 फल है, ऐसा आज खाई खाई लोग खड़े है और उसके झोले में बेर का फूल है, पल है, इस समय है अभी। और देखो लाला एक खोआ है, ओ लाला देखो एक तमाल वृक्ष है। ये तमाल वृक्ष वो खाले है और ठेरे है। सो ये गोपीगण जब ठाकुर जी को ढूंढ रहे हैं और उनका आंख में आंसू है और ठीक से नहीं देख सकते कि वो देखते कि कोई ठेरी वाली खाला वाला चीज है, सो ये तमाल वृक्ष का लिंगन करती है। सो तमाल वृक्ष ठाकुर जी का प्रतिमा है, प्रतीक है। ओ देखो लाला कदम्ब वृक्ष, कदम्ब फूल वो बहुत सुंदर सुनहरे रंग है जैसे राधा रानी। सो ये कदम्ब फूल वो भी राधा रानी का प्रतीक है। अगर संयोग से एक कदम और तमाल वृक्ष साथ साथ खड़े है तो ये जैसे साक्षात राधा और कृष्ण के दर्शन होते हैं। और बंजीवन में एक खाली खाली ही तमाल वृक्ष और कदम वृक्ष वही दोनों आपस में अलिंगन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं राधा कृष्ण। फिर नंदलाला ने कहा ओ बाबा ये खाएं की पैर जिसकी दाढ़ी है बाबा ये खाएं की पैर जिसकी दाढ़ी है बाबा हाँ हाँ बाबा ये खाएं की पैर जिसकी दाढ़ी है। और नंद बाबा ने देखे ओ लाला ये बट वृक्ष ये बट वृक्ष है हमने देखे इसके ज्वार नीचे आ रही जैसे दाढ़ी अच्छा ओ बाबा ये खाएं की पैर जिसके पट्टे की पूंछ है बाबा ये खाएं की पैर जिसके पट्टे की पूंछ है बाबा और नंद महाराज ने देखे ओ लाला ये पीपल पैर है हमने देखे उसके हृदय के समान पट्टे है जो अंत में एक छोटा सा पूंछ आते है और थोड़ा सा हवा है वो हिल जाते जैसे प्रभुपाद के समाधि के सामने विशाल पीपल वृक्ष है ओ बाबा ये आवाज क्या है ये आवाज क्या है बाबा तो नंद महाराज सुनते है ओ लाला ये मोर है ये मोर क्या गाते है केका 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 के राधा खा कृष्ण ये मोर बताते राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और ये ब्रजवासी बताते हैं कि ये मोर गाते
मेगाओ मेगाओ मेगाओ।
और मेरे प्रिय मित्र अच्युत प्रभु जिन्होंने वृंद को मंदिर बनाए थे वो अमेरिका के एक विशेष स्थान से है वो बताते हैं कि ये सब मोर ऐसे गाते हैं फिर अचानक हवा बहने लगे और ठंडा ठंडा हवा और बहुत गर्म था लेकिन ठंडा हवा था और नंद बाबा ने देखे कि पूरे पूर्व की नाइफ होराइजन क्षितिज एकदम खाला है एक तूफान आ रहा है तो फिर चिंतित हो गया कि लाला बिक जाएगा तो बीमार हो जाएंगे लेकिन जब ये बिजली अगर आ जाएगी ये सब गाय इधर उधर चले जाएंगे तो हम लेकिन उसको एकत्र करने के जब तक हम एकत्र करेगा तो फिर ये बारिश आएगा लाला बिक जाएगा मैं क्या करूं अगर लाला ले जाते घर तो फिर आएंगे सब गाय फैल जाएंगे इधर उधर। तो उस समय राधा रानी एक छोटी सी लड़की थी रावल में लेकिन बहुत विचित्र रूप से वो एक वन देवी का रूप ले लिया। फिर नंद बाबा ने देखे पूरा वन एक बहुत सुनहरा प्रकाश से भरे है और देखते देखते इसके स्रोत है एक बहुत सुंदर वन देवी और नंद बाबा ने प्रणाम किया ओ देवी प्रणाम कृपा करके एक काम कीजिए अभी ये बारिश आने वाला है लाला बिक जाएगी जब तक हम सब गाय इकट्ठे करेंगे तो ये लाला ले जाओ आपका माँ ये सोरे के पास। और ये वन देवी हाथ झुके हाथ जोड़ कर झुक करके बोले कि ततस्तु और नंद लाला नंद बाबा से का हाथ से ले लिए और आपका छाती पर लगाए वो कितना नरम है जैसे मक्खन कितना सुंदर लाला है। और फिर चलने लगे गोकुल की ओर चलते 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 वो बंदर वन में आया जहाँ विशाल बट वृक्ष है इसके नाम है बंदीर बट। बंदर बट के नीचे आकर ठाकुर जी अपना हाथ से निकल करके एक 16 साल किशोर का रूप धारण किया तो वहीं खड़ी किशोर किशोरी ब्रह्मा जी पुष्कर से आ रहा था और नीचे देखे ये बहुत सुंदर किशोर किशोरी ये बंदर बट के नीचे है और विचार किया कि बाद में कलयुग में लोग ठाकुर जी और राधा रानी का लीला का अच्छी तरह से नहीं समझ लेंगे और ठाकुर जी और राधा रानी का संबंध का निंदा करेंगे तो मैं इसका शादी करवाएंगे। ब्रह्मा जी आए और प्रणाम किया और तुरंत
ये बट वृक्ष की छान और बहुत सुंदर ये वृक्ष से खप बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ी कपड़ा एक एक शाखा से दूसरे शाखा और बहुत से मोती का हार बहुत मटका जिसके ऊपर नारियल था और मैंगो का पत्ते थे आम का पत्ते थे और बहुत सुंदर स्थान हो गया बहुत सुंदर यज्ञ कुंड प्रकट हो गया फिर ब्रह्मा जी राधा कृष्ण ये यज्ञ कुंड के सामने बिठा दिए फिर ये यज्ञ विवाह यज्ञ का मंत्र उच्चारण करने लगे और हवन करने लगे फिर थोड़ी देर बाद फिर ओ क्या हुआ कि ये सब देवी देवता आने लगे ब्रह्मा शिव ये सब गंधर्व लोग गाने लगे ये किन्नर लोग आपका बाजा बजाने लगे और ये सब अप्सरा आया वो इंद्र धुंधमारा से प्रशिक्षित थी सो वो बहुत सुंदर नाच करने लगे they were trained up by Indra Dhunamara, so they were doing nice dancing. Fear, or ye sab sakhi gan apke kishori rup leke, wo sab prakat hoge usi sthan pe. So fear, yage ke madhye mein, Thakur ji, Radha Krishna ko bataya ke khade ho jao, ke Radha Rani Thakur ji ka बाई हाथ पे आना फिर ये सखी गान बहुत से मंगल वस्तु ये दोनों राधा रानी के साड़ी और ठाकुर जी के चादर का गांठ किया फिर दोबारा बैठ गए और ब्रह्मा जी सब पूर्णहुति का मंत्र उच्चारण किया फिर ब्रह्मा जी यज्ञ कुंड के कोने से ऐसे चावल का धूल से जैसे जो लगते हैं किसी ने कुछ मोती का पीस किया जस्ट लुक लाइक क्रश्ड पर्ल्स वो सात गोल बनाया ये यज्ञ कुंड के कोने से फिर राधा रानी से बोला कि आप आपका दाई हाथ ये गोल के केंद्र में लगाओ और फिर ये बाई हाथ बाई पाओ फिर बाई पाओ इसके आगे नहीं जाना चाहिए और फिर बोला ठाकुर जी उसको लीड कर रहे इसमें और फिर दोनों का दाई हाथ आपस में लगाए फिर ठाकुर जी फिर ब्राह्मण जी कहा कि ठाकुर जी आपका बाई हाथ राधा रानी के पीठ पर लगाओ और राधा रानी से बोले कि आपके बाई हाथ ठाकुर जी के छाती पर सो राधा रानी बहुत शर्म के साथ कभी कभी ऊपर देखे फिर उसका हाथ ठाकुर जी के छाती पे लगाए और ठाकुर जी उसको लेके और ब्राह्मण जी हर मंत्र उच्चारण किया हर गोल गोल के लिए एक धन के लिए एक गायों के लिए स्वस्थ के लिए ज्ञान के लिए यज्ञ के लिए फिर ये सप्ताह फादी कर दिया और हमारा हिंदू धर्म के अनुसार जो सप्ताह फादी किए वो फिर पति और पत्नी बन जाते हैं क्योंकि जो ये सात कदम साथ साथ ले जाएंगे तो पूरे जीवन कदम कदम चले जाएंगे इफ दे विल डू दीज सेवन स्टेप्स टुगेदर देन दे विल वॉक टुगेदर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स तो फिर ब्रह्मा जी नीचे जाके चारों सिर राधा रानी और कृष्ण के चरणों में लगाए और प्रणाम किया और फिर सब लोग प्रणाम किया फिर ब्रह्मा जी जाना नहीं चाहते थे लेकिन योग माया के वेग से ब्रह्मा जी आपके हंस के वाहन बैठ गए वो चल गए और सब देवी देवता वो भी नहीं जाना चाहते लेकिन महा योग माया के वेग से वो भी सब लोग चले गए. फिर राधारानी जो अनादिकाल से कुछ रसोई बना रहे और एक ही पदार्थ कभी दोबारा नहीं बनाया, अनादिकाल से रसोई बनाती है लेकिन एक ही पदार्थ दोबारा नहीं बनाया, वो ठाकुर जी के लिए बहुत सुंदर फीस्ट बनाया, अपने हाथ से ठाकुर जी को खिलाया. फिर ठाकुर जी के जो ब्रह्मनंद था महाप्रसाद उसने खा, उसने खाया. फिर हाथ धो के दोनों बंद में चले गए और ठाकुर जी राधा रानी को सब बंद का सुंदरता दिखा रहा था कि वहीं एक थमाल वृक्ष, ये बेल वृक्ष, ये पीपल वृक्ष. फिर ठाकुर जी दौड़ते 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 एक वृक्ष के पीछे छिप गए. तो फिर रानी 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 दौड़ते 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 आए और वृक्ष के पीछे देखे कोई नहीं है. फिर पीछे से ठाकुर जी ने तो फिर राधा रानी दौड़ते दौड़ते गए और एक वृक्ष के पीछे छिप गए और वो देख रहे थे कि ठाकुर जी आ रहे हैं नहीं, और पीछे से ऐसा अपना आपस में प्रेम प्रस्तुत करके वो वन में चले गए. फिर एक स्थान पे आया जहाँ कोई वृक्ष नहीं था, बहुत सुंदर स्थान, और ये जो धूल था जैसा मोटी और सब रतन के जैसे था, बिल्कुल नाचने के लिए स्थान था. सो राधा रानी और कृष्ण दोनों नाचने लगे और इसके जो नूपुर और बैंगल के वास बहुत विचित्र राग से बजाया के ये सब देवी देवता ऊपर से देख रहा था और भगवान शिव नटराज होते हुए भी नाचने के राजा है नटराज, वो भी नहीं समझ सकते कोई जो रिदम था ठाकुर जी और राधा रानी का नूपुर और बैंगल के था. चिंग 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 चिंग. बहुत सुंदर zoom zoom they were whirling and whirling. और जितने भी वन का प्राणी है वो सब आए दर्शन करने के राधा कृष्ण का नाच. ये मोर अपना पंखे बंद करके वो भी आया ठाकुर जी का नाच देखने के लिए. जय श्री श्री नित्य गौर सुंदर कृष्ण राधा श्याम राधा गिरिधारी और श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज. सब लोग राधा कृष्ण का बहुत सुंदर नाच देख रहा था और ये तूफान आ रहा था. सो जो गराज था तूफान में वो जैसे मृदंग ब्रम चिंग 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 ब्रम और नाचते 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 नाचते. तो हम तो देखे भारत में जब कोई कुछ प्रस्तुत करते हैं तो सब लोग आते हैं और एक नोट से 10 रुपये के नोट ऐसे कर करके उसको दान देते. लेकिन ये मोर एक जंगल के प्राणी है, इसके पास पैसा ही नहीं, इनके पास कुछ नहीं है. ठाकुर जी और राधा रानी को क्या दे सकते, सबका पूंछ का एक पंखे तोड़ दिए और कृष्ण को समर्पित किया. और कृष्ण जैसे कोई अमूल्य वस्तु है इसको उसका हाथ में ले लिया और उसके मुकुट पे धारण किया. और नाचते 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 फिर राधा रानी और कृष्ण जमुना की ओर, जमुना बंजरवन से दूर नहीं है. जमुना के तट पे बहुत से सुंदर मिनरल्स था, अलग अलग रंगी मिनरल. और ठाकुर जी राधा रानी के अंगन में बहुत सुंदर अंगी अंग में बहुत सुंदर चित्र बनाने लगे. तो फिर राधा रानी वो भी ये मिनरल ये रंग स्पर्श करके ठाकुर जी जो रंग लगाना चाहते थे लेकिन ठाकुर जी एक छोटा सा बालक दोबारा बनाया और ये गराज सुनकर वो रोने लगे. और राधा रानी बिलाप कर रहे थे, ओ श्याम सुंदर तू कहाँ गए, ओ श्याम सुंदर ये माया मत दिखाओ तू कहाँ है. फिर बादल से एक आवाज आया जैसे गराज इतना घेरा लाइक गराज के, हे राधे स्थिर हो जाओ, आगे आपका सब इच्छा पूर्ण हो जाएंगे, अभी इसको ले जाए माया सूर्य के पास.
सुस्थिर हो जाए, हो गए महाराज रानी और ठाकुर जी को उसका छाते पे लगाए और जल्दी 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 गोकुल के पास गए और नंद महल में प्रवेश किया। और माँ यशोदा ने देखा कि पूरे महल में एक सुनहरा रंग का प्रकाश आ रहा है और देखते देखते इसके स्रोत है बहुत सुंदर बनने भी। और ये बादल, ये राजा का बादल बताया जो अंदर महल के अंदर, हम तो नहीं देखे क्या हुआ, लेकिन एक छोटा सा चकोरा खिड़की पे थे और उनसे हमने सुना कि महारानी यशोदा प्रणाम करके बोला, ओ देवी, ओ विष्णु की शक्ति, प्रणाम। और राधा रानी ने कहा कि तेरे पतिदेव ये बालक मुझे दे दिया क्योंकि तूफान आने वाला था, सो ये ले लो, वो ये सब गाय इकट्ठे करके बाद में आएंगे। सो माँ ये सूर्य ये लाला ले लिया, उसके छठी पर लगाए, ओ कितना कोमल है जैसे माखन, कितना सुंदर है। और राधा रानी प्रणाम करके वो वापस ब्रावो में एक छोटी सी लाली बन गए जो बिस्तर पर सो रही थी। फिर माँ ये सूर्य ठाकुर जी को स्नान कराया, फिर दूध पिलाया, फिर उसका बिस्तर पर सुलाया। ये सब बादल, ये सब कहानी बादल का राजा से सुना, वो सब इतना हर्षित हो गया कि सब इतना बिजली किया कि आप गिन नहीं सकते, आप दो बताने से पहले दूसरा हो गया, अब एक फिर दो बताने से पहले दूसरा हो गया और तीसरा जितना, और सब गराज, और ये सब गराज सुनकर ये सब मोर गाने लगे, इतना आवाज हो रहा था, इतना राज हो रहा था। माँ ये सोचा डर गए कि मैं लाला ठीक है ये नहीं, तो वहां जाकर इसके कमरे में जाकर बिस्तर पर देखा कि वो सो रहा था और उसके मुंह में बहुत सुंदर मुस्कुरा था। और माँ कीर्ति रावल में ये सब गुराज और नवाज सुनकर वो भी आपके लाली के बारे में चिंतित हो गया, वो वहां गए और उसने अपने के बिस्तर देखा कि बहुत सुंदर रूप में सो रही थी और इसके मुंह में बहुत सुंदर मुस्कुरा है। और दोनों माँ अलग अलग स्थान पे ब्रज में देखी कि दोनों बालक बहुत सुंदर निंद में है, दोनों के मुंह में मुस्कुरा है जैसे वे अपना खापना के शादी के बारे में स्वप्न कर रहा था। श्री श्री राधा कृष्ण की जय। तो ये बंदर वन है। आगे एक बैल वन, इसके तीन नाम है, बैल वन, बिल्व वन और श्रीवन। श्रीवन के नाम से है क्योंकि श्रीमन है लक्ष्मी देवी, सो वहाँ बहुत सुंदर मंदिर है महालक्ष्मी का। और वो ध्यान में बैठे, अगर पुजारी से पूछ रहे थोड़ा सा कपड़े उठा के आप देख सके कि दो भुज ऐसे है, आप ये देख सकते कि दो भुज ऐसे है, फिर दो भुज ऐसे भी है आपका कपड़े के पीछे, और ध्यान में बैठे हैं क्योंकि लक्ष्मी जी वो भी रास लीला में प्रवेश नहीं कर पाए। ये जब तक कोई ब्रज गोपियों का अनुयायी नहीं बन जाएगी वो रासलीला में प्रवेश नहीं कर पाते। यू हैव टू बिकम फॉलोअर ऑफ द कवर डैम्सल्स ऑफ ब्रज। वो लक्ष्मी जी कैसे गोबर उठा कर सकते और उपल बना सकते बना सकती थी, एक दूध निकल सकती, लक्ष्मी जी वो वैकुंठ पति की पत्नी है, ये कैसे ये ऐसा कर सकती। सो वो सोचे किसी प्रकार तपस्या से मैं जाऊंगी। सो वहाँ बैठे तपस्या में, अभी तक वहाँ विराजमान है तपस्या में, लेकिन उसका आने का नहीं है। तो एक बार ठाकुर जी ने सोचे मैं वहाँ जाएंगे और उसका दर्शन करवाऊंगे। सो ठाकुर जी ने कहा कि मैं सब गोपियों से मैं अभी जमुना पार करके वहाँ बेलवन में जाएंगे और लक्ष्मी को दर्शन देंगे। सो ठाकुर जी ने सोचा कि महालक्ष्मी ये अभिमान है कि मैं वैकुंठ पति की पत्नी है, तो वो बहुत बड़ी है, सो छोटे रूप धारण किया, छोटा लाला के रूप में धारण किया। सो वहां गए इसी महीने, पोस्ट महीने में, आज वाज ट्यूसडे, हर एक गुरुवार
गुरुवार थे पौष महीने के, लेकिन कौन सा गुरुवार किसी को पता नहीं, तो इसलिए चारों और कभी कभी पांच गुरुवार भी है मेला लगते हैं। कौन सा मेला अभी बताएंगे। ठाकुर जी वहां गए और रोने लगे, तो लक्ष्मी जी का ध्यान भंग हो गया और देखे छोटा लाला रो रहे, तो इसका माँ का हृदय नहीं सहन कर सकते कि छोटा लड़का रो रहा था। तो वहां अभी भी कुछ नहीं है, अब जाएंगे बेलवन, छोटा सा गांव है, कुछ नहीं है, वो गांव वो भी दूर है बेलवन से, कुछ नहीं है वहां। तो किसी प्रकार थोड़ा सा चावल मिले, थोड़ा सा दाल मिले और खिचड़ी बनाया और ठाकुर जी को खिचड़ी खिलाया। सो हर गुरुवार पौष महीने में ये खिचड़ी मेला लगते है और लगभग 20-30 हजार आदमी आते हैं इसमें, 20-30 हजार आदमी। और अब गाड़ी लेके जाएंगे तो फिर छोटी छोटी, हमारे बस भी नहीं जा सकते, बस 2 किलोमीटर दूर रहकर हम तो पैदल से आना पड़ता है। सो गाड़ी इतना छोटा रास्ता है, वो ये सब फंस जाते हैं, 1 घंटा लगेगा गाड़ी आने के, गाड़ी छोड़कर ड्राइवर के साथ और पैदल से आना, नहीं तो जमुना पार करके और 20 मिनट पैदल का रास्ता खेत के द्वारा फिर आप पहुंच सकते खिचड़ी मेले में। बहुत से सेठ आते और बहुत बड़े बड़े खराए से खिचड़ी, सबको खिचड़ी खिलाते, खिचड़ी जलेबी, और वहाँ मेला लगते है, ये फेरस व्हील ये सब कुछ होते है हर गुरुवार। पिछले गुरुवार आई थिंक वॉज फर्स्ट मेला, पिछले हफ्ते जो ये सबसे पहले मेला था। सो ये बेलवन है। सो फिर जो हम जाते हैं, क्योंकि बस तो 2 किलोमीटर दूर है, तो वापस जाने के बस के लिए हम कुछ नौकर बुलाते हैं, और फिर क्योंकि वो बिल्कुल जमुना के किनारे है, सो हम ये सब नौकर में बैठ करके कीर्तन करते और फिर वृंदावन वापस जाएंगे, बस को वापस मथुरा भेज देंगे और हम नौकर से कीर्तन करते हुए वृंदावन वापस जाएंगे। ये मानसरोवर, बंजीवन और बेलवन। हरे कृष्ण।